नमस्कार, मैं उमाशंकर अग्रवाल, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं विदर्भ सब जोन इंचार्ज आदरणीय राजयोगिनी बी के पुष्परानी दीदी जी, हम प्रेम से नमस्कार करते हैं। आदरणीय दीदी जी, हम आपको ये बता दें कि आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं वे हमारे नागपुर शहर के बहुत ही प्रसिद्ध और शिखर को छूने वाले चार्टर अकाउंटेंट्स यहाँ आए हुए हैं, साथ ही सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने अपने कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। ये सब आज आपके सामने अपनी जिज्ञासा रखेंगे और आपसे जिज्ञासा का समाधान पाएंगे। और सभी उपस्थितों का एक बार फिर स्वागत करते हुए पहले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष जुल्फेश शाह, अपना प्रश्न कृपया प्रस्तुत करें।
आध्यात्मिक ज्ञान तथा ध्यान किस प्रकार से हम प्रोफेशनल्स को मानसिक रूप से प्रेरित कर सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हमारे जीवन में हम ले सकते हैं तथा वो हमारे जीवन में किस तरह विकास का कार्य कर सकता है, मेरा दीदी से ये बहुत ही जिज्ञासा भरा प्रश्न पूछना चाहूंगा।
तो हमें भी पहले अपने मन को ऐसा प्रकाशित करना है, ऐसी शक्ति देनी है जो आने वाली समस्याओं को आप हटा सकेंगे, क्योंकि समस्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे एक झाड़, उसके अंदर भिन्न भिन्न टहनियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, कोई सुंदर है न कोई नहीं सुंदर है, कोई फल कड़वा है कोई मीठा है। तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि मीठा ही फल निकले वो ना निकले, परंतु आप उसके केवल एक एक टहनी को नहीं काटते हैं। ये कड़वे फल क्या है, काट दो, काट सकते हो, परंतु वो टेम्परेरी होता है। इसके लिए उसकी जड़ को काटना पड़ता है। तो जड़ को काटने के लिए उतनी ही अधिक शक्ति की जरूरत है, वह मानसिक शक्ति। वो मिल सकती है हमें परमात्मा के साथ। जब अपना मन का संबंध उधर जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको शक्ति मिलेगी। उसके अंदर हमारा निर्णय शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आते तो कई बार मनुष्य उलझ जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कहा जाता है बुद्धि की लाइन क्लियर करो। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, निर्णय करने की शक्ति है, और इसके पहले परख शक्ति की भी जरूरत है, दूरादेशी बुद्धि की भी जरूरत है, तो अगर इन शक्तियों को हम अपने पास रखेंगे तो कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अगर कोई भी शक्ति की अगर हमारे जीवन में कमी होगी तो बाधक बनती, तो वो शक्ति मिलती है अध्यात्म से, क्योंकि हमारा ध्यान बाह्य दुनिया से निकलता। तो निर्णय शक्ति कहां से आएगी, या कोई व्यक्ति किस भाव से बोल रहा है उसको हम कहां परख सकेंगे। तो इसलिए अध्यात्म पहले फिर व्यवहार, जिसको कहा जाए कहते कर्म करने के पहले सोचो फिर कर्म करो।
दीदी ने कहा आध्यात्मिक शक्ति, ये वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर कार्य में सहायता करती है, और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें जुड़ना है परमपिता परमात्मा से। परमात्मा से जुड़े, वो शक्ति प्राप्त करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सचिन धन्नावत,
हमारी दिनचर्या जो रहती है वो एक हम एक सुनिश्चित करते हैं, पर उसमें आए दिन व्यवधान आते रहते हैं। उससे हमारी जो हमने सोचा है कि दिनचर्या इस तरह से होना चाहिए, तो वो हम आगे उसको रोजमर्रा की जिंदगी में अपना नहीं पाते हैं। साथ ही मेरा एक और प्रश्न ये है कि वर्तमान स्थितियों में आदमी ने हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम अपनी प्रगति ना करें?
पहली बात, हमारी दिनचर्या निश्चित हमें जरूर करनी है, पर यह भी हम समझ लें वर्तमान समय अनेक प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, जिस कारण से कई बार दिनचर्या हमारी अपसेट होती है, क्योंकि जो सामने बात आती है, कार्य आता है, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें कंसंट्रेशन अधिक करना पड़ता है। वो करके जैसे वो पूरा होता है, फिर से हम अटेंशन में आ जाएं कि हमको वापस अपनी दिनचर्या में आना है। जो किसी कार्यवश कमी ज्यादा हुई उसको हम सोचे नहीं, वापस अपनी गाड़ी को हम लोग ट्रैक के ऊपर ले आए। और दूसरी, हम अपने आप को इतना लाइट रखें, जो बीती बात का हमारे को रुकावट हमारे सामने ना आए। प्रगति भी जरूर करनी है, परंतु सही रीति से प्रगति करेंगे तो लाइट रहेंगे। जब हम कुछ हेरा फेरी करते हैं तो हम लाइट नहीं रह सकते, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। खुशी एक हमारे जीवन का आधार है। धन भी कमाते खुशी के लिए, हर कार्य करते खुशी के लिए। खुशी गमा करके हम दूसरा कार्य न करें, या यूं के कार्य करते अपनी खुशी के खजाने को गंवाने न देवे। कार्य भी करना है, आगे भी बढ़ना है, खुशी भी अपने पास रखनी है, ये केवल एक अपने पर हमें अटेंशन दे।
दीदी जी ने कहा कि दिनचर्या सुनिश्चित और प्राकृतिक होनी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या के ऊपर आधारित है हमारे शेष कार्य, तो दिनचर्या के ऊपर विशेष हम ध्यान रखें। यदि किसी कार्यवश किसी क्रम में बाधा उत्पन्न होती है तो उस कार्य को करने के बाद रीसेट हो जाएं, फिर से वापस अपनी पुनः उसी स्थिति को प्राप्त करें। महिला सीए हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना प्रश्न करें। आरती पालडीवाल जी।
आदरणीय दीदी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे घर में अपने बच्चों को और पारिवारिक अन्य दायित्वों को पूरा करते हुए अपना कार्य करना पड़ता है, तो कैसे सहजतापूर्वक हम इन कार्यों को इन दायित्वों को पूरा करें?
सबसे पहले अपने को लाइट बनाएं। दूसरा, अगर मेरा समय कहीं व्यर्थ जा रहा है तो उसको बचाएं। तीसरी बात, जैसे बाकी कार्य हैं, अपने परिवार के लिए भी कुछ समय अवश्य सेव करें। तो इसके लिए जरूरत है बैलेंस की। अगर हम बैलेंस से चलेंगे तो तनाव नहीं आएगा, तनाव बुद्धि को खींचेगा नहीं। तो इसके लिए जब कार्य के प्रति हमारी एक लगन होती है, लगन से करेंगे तो उसको तनाव नहीं कह सकते हैं। उसका चिंतन अगर है, क्या क्यों कैसे क्या करूं, अगर प्रश्न चिन्ह है मन के अंदर, तो तनाव है। कार्य की लगन तनाव नहीं है।
दीदी जी ने कहा पारिवारिक कर्तव्य और कार्यालयीन दायित्व, इनके बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। संतुलन स्थापित होने के पश्चात जो भी कार्य हम करें उसे प्रसन्नता से करने का प्रयास करें। जैसे ही प्रसन्नता से हम किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तनाव स्वतः ही तिरोहित हो जाता है। अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं महेंद्र कामत जी की ओर।
आदरणीय दीदी को मेरा प्रणाम। और मेरा सवाल दीदी यह है कि मूल्यों पर आधारित जीवन हर कोई जीना चाहता है, लेकिन आजकल की जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो सिस्टम्स हैं, उसमें किसी को भी अपना मूल्य बेस्ड जीवन जीने के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने मूल्यों को कायम रखते हुए इस व्यवस्था में किस तरह से जीवन जिया जाए और सफलता पाई जाए।
ये केवल ज्ञान और राजयोग इसे बहुत वो मदद करता है। वो ऐसा कार्य करता है जैसे समस्या आती है पर वो समस्या हमको समस्या ही नहीं रखती है, क्योंकि हम उस समस्या का चिंतन नहीं करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं। कठिनाई कब महसूस होती है? जब समस्या का चिंतन है। कार्य में कोई तकलीफ नहीं देता है, उसका चिंतन ही वो हमको तनाव में लाता है। ये हम मानते हैं आज का समय ऐसा है, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, पर मैं पहला खुद के लिए प्रयास करूं, कैसी भी बात आए मुझे अपना हर्षित रहना, लाइट रहना, इसके लिए चाहिए सरल चित्त की नेचर। समझो कहीं अगर आपके मन के विपरीत कोई बात सामने आ गई तो हम तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। कार्य करना है, समस्याओं का सामना करना, पर शांति के साथ, सरल चित्त के साथ, एक दो को समझ करके हम उनके साथ बहेव करें, और कार्य जब उनको बतावें तो भी हम जरा समझा के बतावें ताकि कार्य ठीक हो,
अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, चित्त में सरलता रखें। चित्त की सरलता से लाभ ये होगा कि जिनके संपर्क में हम आते हैं और जिनके संपर्क में आने के कारण हमारा मूल्य आधारित जीवन प्रभावित होता है वो नहीं होगा। और इसके लिए दीदी ने प्रारंभ में कहा ज्ञान की परम आवश्यकता होती है, तो हम ज्ञान पाने की दिशा में आगे बढ़े। कैलाश जोगानी जी अगला प्रश्न हम सबके सामने रखेंगे।
आदरणीय दीदी जी, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आजकल आध्यात्मिक और इसमें हम ऐसा कहते हैं कि तनाव मुक्त रहिए, पूर्ण तनाव मुक्त रहिए, क्या कमिटमेंट के लिए, कमिटेड लाइफ जीने के लिए, डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए तनाव जरूरी नहीं है? अगर पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहे तो हम कमिटमेंट में पक्के नहीं हो सकते, तो इसके बारे में आप राय दीजिए।
ऐसी बात नहीं है, कार्य हरेक ने किया है और हर एक करता ही है, सिर्फ एक शब्द हम ऐड करें, आज तक हम टेंशन में रहे उसमें केवल ए ऐड कर दीजिए, अटेंशन। लेजी भी ना रहे, केयरलेस ना रहे, कोई भी कार्य के प्रति आप केयरलेस नहीं रह सकते हो, केयरलेस है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। केयरफुल रहो, चेयरफुल रहो, ये दोनों करते हुए, इसका भी बैलेंस रखते हुए आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो टेंशन होता है वो डिसीजन पावर को बताए खत्म करता है, वो और ही नुकसान होता है। इसलिए ये बैलेंस हमारे को रखना जरूरी है, कार्य भी करना, हल्के भी रहना।
तनाव हमारे जीवन की निर्णायक क्षमता को प्रभावित करता है, उसे खत्म करता है। दीदी जी ने कहा कर्तव्य कर्म को करना है, किंतु टेंशन में नहीं, अटेंशन रह के करना है। कार्य को करने के प्रति जरा भी आलस्य नहीं होना चाहिए, ये मत आदरणीय दीदी जी का रहा। संजय गुलकरी जी, कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
हमारा जो प्रोफेशन है वो हम लोग हिसाब किताब चेक करते हैं, तो उसमें बहुत जगह हमको कुछ गड़बड़ी नजर आती है, तो ऐसे दौर पे हम यदि मूल्य, जीवन मूल्य के जो सिद्धांत है उसके आधार पे हमारा ऑडिट रिपोर्ट यदि देते हैं तो हमको समाज में काफी कठिनाई आती है उसके बाद में, तो उसमें फिर सच को झूठ साबित किया जाता है, झूठ को सच किया जाता है, तो ऐसे जो अधिकारी हैं भ्रष्ट उनको जैसा का तैसा व्यवहार अपन किए तो उसमें सिद्धांतों का क्या ये होगा क्या?
वास्तव में जो आपका पेशा है सच्चाई का पेशा है, सही सही जो रिपोर्ट है वो देना, वो आप अपना पहले निश्चय बना ले। समाज कुछ भी करे पर मैं क्या कर रहा हूं, जब वो हम सत्यता के राह पे चलेंगे आप देखेंगे बहुत हल्के रहेंगे। वास्तव में सत्य से राह क्यों बदलती है? जब लोभ वृत्ति आती है, अधिक धन कमाने की आती है, तो हम अपने जीवन के असूल छोड़ देते हैं। असूलों को हम कभी भी न छोड़ें। तो इसलिए एक तो सच्चाई को जरूर साथी बनाइए, असूलों को पक्का करिए, उसको छोड़िए नहीं। इसके साथ साथ जैसे ये हिसाब किताब हैं, ऐसे ही अपने कर्मों के भी हिसाब किताब के ऊपर जरूर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। व्यक्तिगत यज्ञ अपना भी एक प्रकार से ऑडिट करिए, क्या मेरे अंदर लोभ की वृत्ति तो नहीं आई जो मैं झूठ को सच सच को झूठ कर रहा हूं? क्योंकि जब हमारे अंदर ही वृत्ति या पैदा हो जाती है तब हम ये सब कार्य उल्टे सीधे करते हैं। क्या हम ये विचार करें हमको ये कलयुग ही पसंद है क्या, जो उसके कमी कमजोरी जो अवगुण है उसको हम पकड़ के बैठे? जैसे सदा रात में रही फिर दिन आना ही है, तो कलयुग कलयुग कहीं नहीं पर कलयुग बना हमारे कर्मों से, तो सतयुग भी हमें बनाना है। मनुष्य ने कलयुग बनाया, मनुष्य सतयुग बनाता है। तो हम ये अपना पहले लक्ष्य रखें, हमें इस दुनिया के नक्शे को बदलना है, सत्य के राहों पे चल करके सतयुग स्थापन करना है।
बहुत ही सुंदर उत्तर दीदी जी ने दिया। यदि हमारे भीतर ये दृढ़ निश्चय की भावना है कि हमें सत्य और सिद्धांत पर ही चलना है, तो उसका दामन हम नहीं छोड़ें, उस राह पर चलें, ईश्वर की सहायता हमें प्राप्त होगी। और टिट फॉर टैट दीदी ने इसका उत्तर भी इसी में दिया है कि हमें जो बुरा कर रहा है उसको बुरा करके जवाब नहीं देना है, हमें अपने भीतर अपना स्वयं का ऑडिट करना है, वहां कहां विसंगति है उसे हमें दूर करना है। और आइए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं, राजेश ताजपुरिया के पास।
आदरणीय दीदी, क्या इस युग में पूर्ण सत्यवादी जीवन संभव है, और किसी एक विषय में मन को कैसे एकाग्र करें, और क्या ईश्वर का साक्षात्कार संभव है इस जीवन में?
सत्य का जीवन बिल्कुल संभव है, इम्पॉसिबल कोई चीज है ही नहीं। हमारी दादी प्रकाशमणि जी जो संस्था की मुख्य प्रशासिका रही हैं, 33 वर्षों तक उन्होंने ये कार्य किया है, परंतु उनके जीवन का यह अनुभव सदा रहा है। वो स्वयं भी कहते रहते थे कि मैंने कभी भी जीवन में झूठ बोला ही नहीं है, और हमने दादी जी का साथ का अनुभव किया हुआ है। कभी भी उन्होंने बात की हेरा फेरी इधर उधर, या मन में एक मन तन बुक से एक कभी नहीं किया है। हमारे सामने उदाहरण है, और इस विद्यालय में यही सिखाया जाता है। एक तो संभव है, और दूसरा इसके साथ उसकी युक्ति है, ये ज्ञान इसका कोर्स वो करके आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाओ तो आपको वे अपने आप मिल जाएगा।
बहुत ही सुंदर दीदी का ये व्याख्यान रहा, प्रश्न का उत्तर रहा कि ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान अर्जित करने के लिए राजयोग मेडिटेशन का सहारा लें। सभी योगों में सबसे सरल, सहज और स्वाभाविक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो कर सकते हैं राजयोग, इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति होने से आपका जो प्रश्न है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर का साक्षात्कार, ज्ञान की उपलब्धि होने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, ये प्रश्न किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये दीदी जी का उनके उत्तर में आशय था। दिलीप लोहिया, कृपया आप अपना प्रश्न दोहराएं।
मनुष्य डरता क्यों है? किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले डर क्यों हावी हो जाता?
या तो हमारे मन की कमजोरी है, दूसरा उसके अंदर कुछ न कुछ हमारे कुविचार भरे हुए होते हैं या बुरा कर्म करने का कोई संकल्प होता है, किसी को दुख देने का संकल्प होता है, तो वहां भी हमारे को डर पैदा होता है। जहां कुछ भी पाप है वहां डर है, सही दिशा पर हो तो डर किस बात का। सिंधी में कहते हैं सच तो बीठो नच, तेरे पल्ले सच्चाई है तो तुम्हें कोई डर नहीं है। सांच को नहीं आंच, वो भी हम मानते हैं ना, तो डर है या तो कुछ अपनी कमी है या मेरे अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ये मैं कर सकूंगा या नहीं, वो भी एक प्रकार का डर होता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जब अगर मैं राइट कर्म में कर रहा हूं सफल जरूर होऊंगा।
मन की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी, और इनके कारण है वो विचार जो हमारे जेहन में, हमारे मन में, मस्तिष्क में अनुचित रूप से आ जाते हैं। अनुचित रूप से आए इन विचारों को निकालने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। दीदी जी का ये बहुत ही सुंदर हम लोगों के लिए उत्तर था। प्रमोद मदान जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रश्न उपस्थित करें।
मेरे आपसे दो क्वेश्चन है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, और सेकंड हम लोगों का जो प्रैक्टिस है और सोशल लाइफ है इसमें बहुत डिस्टर्ब होते जा रहा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं तो सोशल डिस्टर्ब होते जा रहा है, इसके लिए क्या उपाय।
जैसे अगर किसी को कहा जाए कि पहाड़ लांग जाओ तो आपके सामने पहाड़ खड़ा है तो आपको बड़ा कठिन लगेगा कैसे जाऊं, पर क्या पंछी को कठिन लगेगा क्यों ऊपर से उड़ के चला जाता है? क्या प्लेन को पहाड़ को क्रॉस करना कठिन लगेगा? क्या उसको बादल पार करने में कठिनाई होती है? क्योंकि उसकी शक्ति है। तो इसलिए हमारी जीवन के अंदर भी एक उमंग, खुशी, एक उल्लास, ये दो पंख है। ये दोनों पंख राजयोग से लगेंगे फिर हम उड़ के सहज क्रॉस कर लेते हैं। एक पहाड़ जैसी समस्या हमारे आगे रुई बन जाएगी। आज हम क्या करते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। वास्तव में जो हम बातें करते हैं, हमने राई को पहाड़ बनाया है। एक छोटी कोई एक बात आ जाती है, बोलने वाला एक शब्द बोल के चला जाता है, वो तो एक तरफ हो गया, आप अपना उसके पीछे कितना समय गंवाते हो, क्या करूं कैसे करूं, इसने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब था, क्या 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 क्या, तो क्यों 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 ये जमा होते होते बड़ा पहाड़ बन जाता है, फिर उस बोझ के तले आप दब जाते हो।
राजयोग ऐसी दवा है जो जीवन के हर रोग का निराकरण करने में सक्षम है। मन का डर, तन का डर, परिस्थितियों का डर, चाहे किसी भी प्रकार का डर क्यों न हो, यदि हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है जो हर समस्या को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। ब्रह्म कुमारी इसके केंद्र में ये शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, बहुत प्रेम से दी जाती है, इसमें आप राजयोग सीख सकते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एस जी टावरी वयोवृद्ध सीए हैं, कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
आदरणीय दीदी जी, मेरा प्रश्न ये था कि व्यक्ति आध्यात्मिक आधार लेते हुए शांत और सुखी वो रह रहा है, लेकिन उसकी चिंता ये है कि उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जो कुटुंबियों के, रिश्तेदारों के, दूसरों के संपर्क में आता है, उसको उसकी ऐसी समझ है कि वो उस मार्ग से वो नहीं चल रहे हैं, और उसको ये चिंता होती है कि वो अगर इस मार्ग से नहीं चलेंगे तो उनका जरा ठीक नहीं होगा। ये जो चिंता उस व्यक्ति पे आती है, उस चिंता को किस तरह हटाया जाए?
इसलिए विद्यालय स्लोगन देता है, स्वयं बदलो दूसरा बदल जाएगा, ये शुभ भावना रखो। तो हमारा जो बाकी वैल्यूज है, आने से उसको भी प्रेरणा समय आने पर मिलेगी। इसलिए क्षमा, दया, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत बड़ा कार्य करती है।
शुभ भावना हम दे, कैसे दे शुभ भावना, इसे जानने के लिए राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो आपके भीतर ऊर्जा को भरती है। ये ऊर्जा आपके भीतर से प्रवाहित होती है, निरंतर निकलती है और आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, मित्र हो, कोई भी हो, उसको भी वो प्रभावित करती है। और इसलिए आप राजयोग मेडिटेशन के द्वारा शुभ भावना देने की क्रिया को समझें और शुभ भावना देने की जो शक्ति है उसको पहचान कर आत्मसात करें और सबको शुभ भावना देते चलें। ये दीदी जी ने हमको आज के मार्गदर्शन में बताया। और इसके साथ ही मार्गदर्शन कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है। सबसे पहले हम आदरणीय दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी शंकाओं का, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का बहुत ही समाधानकारक उत्तर दिया है। और ये आपका आशीर्वाद हमारे लिए है, ऐसा हम समझते हैं। और हमारे बीच जो हमारे शहर के प्रबुद्ध जन यहां उपस्थित हैं, चार्टर अकाउंटेंट के क्षेत्र में जिनकी ख्याति पूरे नागपुर के अंदर में हर आदमी जानता है और जिनके कारण उद्योग जगत का शिरोमणि चैन की नींद सोता है, जिनके कारण हम आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अगले ऐसे ही किसी सत्र में एक बार फिर हम और आप आमने सामने होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।